समय सार लेक्चर नंबर 681 ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः प्रणामो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं
नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे
वन्दितसंवसिद्धे
ध्रुवमचलमनोवमङ्गलिं पते गोच्छामि समयपाहुड
यह कुंद कुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में समय सार गाथा 308 से 311 इसकी बात हम देख रहे हैं, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात विशेष रूप से यहाँ समझाई जा रही है। हम पृष्ठ क्रमांक 28 पर आए हैं। सर्वद्रव्यानां द्रव्यांतरेण सहोत्पाद्योत्पादक भावा भावात आप 8-6 के नहीं हाँ 6 पर नियम सार मातु काल द्रव्य विना कोई द्रव्य ना परिणाम न होए एम कहूं छे। क्या कह रहे, देखो ये सर्व द्रव्यानाम द्रव्यांतरेण सह उत्पादक भाव अभावात। हाँ,
सर्व द्रव्यानाम सभी द्रव्यों का द्रव्यांतरेण सह अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव अभावात। उत्पाद्य और उत्पादक भाव का अभाव है। एक द्रव्य उत्पादक है और दूसरा द्रव्य उसके द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा कोई उसमें संबंधन नहीं है।
इन भाव का अभाव है।
ऐसे भाव का अभाव है, उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। उसका अर्थ है एक उत्पादक और दूसरा उसका उत्पाद्य उसके द्वारा उत्पन्न हो, ऐसी बातें है ही नहीं।
ये किसके लिए बता रहे थे? उसके ऊपर में जो दो लाइन है ना, उसको हम देखते हैं। आ मारगड़ा जुदा भगवान, यहाँ इसके आगे प्रत्येक द्रव्यनी जे ते अवस्था जे ते काले थाय छे ते ते द्रव्यनु कार्य छे। बीजू द्रव्य तेनु कारण वा उत्पादक थाय एम छेज नहीं, ये बात बता रहे।
यानी किसी द्रव्य की पर्याय अन्य द्रव्य के द्वारा नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। नियम सार में तो काल द्रव्य के बिना अन्य द्रव्यों का परिणाम नहीं होता ऐसा कहा, वो परिणमन में निमित्त है ना। हाँ, तो वहां जो कथन है तो शंकाकार उसका आधार लेकर पूछ रहा है, ऐसा वहां तो कह दिया है।
तो कह रहे हैं कि नियम सार में तो काल द्रव्य है ना, उसके बिना तो परिणाम नहीं होता है, वहां तो निमित्त की भाषा है। तो यहाँ कहते समाधान में, त्या तो काल द्रव्य ने सिद्ध करवा ये बात करी छे। काल द्रव्य का मुख्य गुण कौन सा है जो हम जानते हैं? प्रेरणा बिना आप जानती हैं? हाँ, परिणमन। आगे क्या परिणमन बताया आपने, आगे शब्द रह गया उसका गुण। गुण हाँ, अश्विन भाई आप बता रहे। हाँ, परिणमन हेतुत्व देखो आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व,
देखो परिणमन करना ऐसा कहे तो सभी द्रव्यों का हो जाएगा,
यानी अन्य द्रव्यों का जो परिणमन होता है उसमें काल द्रव्य निमित्त होता है। देखो हम जब ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हैं तो यहाँ जो बात कहने में आ रही है वो हमें बिल्कुल समझ में आएगी, कौन सी बड़ी बात है। ये क्या वहाँ ऐसा क्यों कहा, तो कहते त्या तो काल द्रव्य ने सिद्ध करवाए बात करी छे। क्यों कि जब जब कोई कार्य होता है तब तब वहाँ उचित निमित्त अवश्य होता ही है, हर समय प्रत्येक द्रव्य में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, यानी प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में, और इन प्रत्येक कार्य में एक निमित्त है वो काल द्रव्य है, ख्याल में। इसलिए क्या समझा रहे हैं, क्या तो एटले क्या नियमसार, नियमसार में क्या बताया, काल द्रव्य बिना कोई परिणाम न हो एटले कोई द्रव्य नो परिणाम थतो ज नथी, तो वहां निमित्त की मुख्यता से कथन किए। तो वहां कह रहे भाई वैसा क्यों कहा वहां, तो कहते वहां तो काल द्रव्य को ही सिद्ध करना था, क्योंकि कार्य हो रहा है तो वहां निमित्त है ना, तो निमित्त काल द्रव्य है, क्योंकि देखो बहुत जीवों के जो भोले जीव है ना वो तो काल द्रव्य को द्रव्य मानने को ही राजी नहीं है। तो यहां तो कह रहे काल द्रव्य है और उसकी सिद्धि कुंद कुंदा आचार्य ने नियमसार में की है, तो इसलिए त्या तो काल द्रव्य ने सिद्ध करवा ये बात करी छे, त्या कई द्रव्यो नु परिणमन सिद्ध करवू नथी। वास्तव में तो द्रव्यत्व गुणना कारणे प्रत्येक द्रव्य में निरंतर सहज परिणमन थतु हो, परिणमन ए द्रव्य नो सहज स्वभाव छे। तो हमने कैसा देखा था द्रव्य का स्वभाव, नित्य कायम टकी ने नित्य परिणमन करवू उत्पाद वे ध्रुव तो जिसमें लगा है। तो यहां तो कह रहे हैं कि परिणमन ए द्रव्य नो सहज स्वभाव छे, तेथी प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय जे जे परिणाम थाय ते ते द्रव्य नो उत्पाद्य छे, उत्पाद ने जिसको उत्पन्न किया जाता है ऐसा, अने ते द्रव्य ते ते परिणामों नु उत्पादक छे, पन काल द्रव्य के अन्य द्रव्य ते ते परिणामों नो उत्पादक छे एम छे ज नहीं, अन्य द्रव्यों ना परिणमन मा काल द्रव्य निमित्त हो नियम रूप निमित्त छे। ये नियम रूप निमित्त का दूसरा शब्द हमने सीखा है, हाँ वीरेश भाई आप जानते हैं नियम रूप निमित्त, डॉक्टर साहब अच्छा दोनों को याद नहीं आ रहे, तो दिव्या बहन बताएगी, आपको भी याद नहीं है, हाँ जोर से बोलो जोर से, अंतरंग निमित्त नहीं सुना था, अरे क्या बात करते हैं, हाँ साहब कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
हमेशा हम उल्टा प्रश्न पूछते थे कि अंतरंग निमित्त का अर्थ क्या है तो उसको हम नियम रूप निमित्त कहते थे, आज उल्टा पूछा है ना
तेथी क्या कहा, फिर से उसके ऊपर की लाइन से पढ़ता हूँ मैं, अन्य द्रव्यों ना परिणमन मा काल द्रव्य निमित्त हो नियम रूप निमित्त छे, तेथी काल द्रव्य विना परिणाम न हो एम त्या कहूं छे, पन काल द्रव्य अन्य द्रव्यों ना परिणामों नो उत्पादक छे माटे कहूं छे एम नथी। कितना अच्छा खुलासा किया है स्वामी जी ने, भाई आ तो भगवान जेव स्वरूप भाड़ियों तेवू भाक्यू छे, ये भाड़ू और भाक्यू समझ में आया, हाँ नहीं 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 हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ भाड़ियों यानी देखियो छे जाण्यू छे, अबे हम जाण्यू छे एवं भाक्यू एटले तेवू कयू कथन करियू, ये क्या गुजराती शब्द है ना इन लोगों को, मैंने हमको पहले में कि कभी कभी समझने में कठिनाई होती है, भाक्यू छे ये तो निमित्त थी कहवाय, बाकी वाणी नु कार्य क्या भगवान नु छे, देखो उसमें भी फिर उसको सीधा करा देते हैं, ए तो भाषा वर्गणा ना परमाणु हो ते काले भाषा रूपे परिणमवानो काल हतो तो ते रूपे परिणमी गया छे, भगवान महावीर ने केवल ज्ञान थयुं ने वाणी 66 दिवस सुधी न छूटी, ते वाणी छूटवानो त्या काल न हतो माटे वाणी न छूटी, आषाढ़, ये ढ बराबर है या ढ चाहिए? ढ बराबर है। आषाढ़ वदी एक ना दिने, रहने तो गुजराती है ना भाई, हाँ हमारे में ढ होता है। अरे अरे भाई हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हाँ ड ड बराबर है, चलो ठीक। आषाढ़ वदी एक ना दिने वाणी छूटवानो काल हतो, त्यारे वाणी छूटी। बापू आ तो परमाणुओनी अवस्थाओ, जे समय जे थवानी होय ते त्यां थाय छे, ते भाषानी पर्यायनो करता वा कारण आत्मा नथी।
ए आषाढ़ वदी एकम जो छे आ दिवस नो कोई बीजो महत्व पर खबर छे? हाँ हाँ, चातुर्मास शुरू होता है। दूसरा, इस दिन कुछ हुआ था विशेष? काल का प्रारंभ इसी दिन से होता है, पंचम काल या छठा काल जो आरा कहते हैं ना, तो इसी दिन से शुरुआत होती है।
ये क्या कहते हैं, आत्मा जो है वो भाषा का पर्याय का कर्ता भी नहीं, वह कारण भी नहीं। भारत ईश्वर करता नहीं है माने, पर शरीर नो पर्याय नो करता हूँ छूं एम माने तो ए तो मूढ़पणू छे। जेम ईश्वर करता नहीं तेम अंदर आ परमेश्वर प्रभु आत्मा छे, ते पण परनी पर्याय नो करता नहीं। तेवी रीते कोई पण द्रव्य अन्य द्रव्य नी पर्याय नो करता त्रण काल मा नथी। प्रत्येक द्रव्य नी तेते समय थती तेते पर्याय स्वतंत्र छे, अने ते पर्याय नियत समय एज थाय छे। देखो दो बातों का यहाँ क्रमबद्ध पर्याय में विशेष रूप से एम्फसाइजेशन किया है। पहले तो प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, उसका कर्ता ना स्वद्रव्य है, स्वगुण है या पूर्व पर्याय है, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये तो अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती है एक बात, उसका कर्ता कर्विता कोई नहीं है। दूसरी बात, जिस समय होनी है उसी समय होगी, उसका आगे पीछे होना भी पॉसिबल नहीं है। यह क्रमबद्ध पर्याय की खासियत है। क्या लिखा देखो नीचे से दूसरी लाइन, प्रत्येक द्रव्यनी तेते समय थती तेते पर्याय स्वतंत्र छे, अने ते पर्याय नियत समये ज थाय छे, बीजा समय नहीं। एम कर्मबद्धनो नियम समझावीने आचार्य देवाए अकर्तापणू सिद्ध करे छे। शेत्रुंजयना पहाड़ ऊपर चढ़ता एकदम झड़पती पग उपाड़वानी क्रिया थाय, त्या आ माने के ते माराती थाय छे, तो ते मूढ़ मिथ्या दृष्टि छे। केम के आत्मा ने परद्रव्यनी क्रियानु कर्तापणु नथी, यानी शरीर की क्रिया ये जीव नहीं कर सकता है। आहा, सत ने असत माने ने असत ने सत माने तेनी तेने आवी वात गळे केम उतरे, अने तेने धर्म क्यांथी थाय? हा पण एने आ समझावीए तो समझावीए, कोण समझावे? जे पोते समझे तेने बीजो शुं समझावे? क्या कहा? सुनो मैं कुछ और बात बताना था। जे पोते समझे तेने बीजो शुं समझावे? समझ तो समझने से समझ में आती है, समझाने से समझ में नहीं आती। तो ये हिंदी में कहा स्वामी जी, गुजराती में लिख रहे कि जे पोते समझे तेने बीजो शुं समझावे, अने जे पोते न समझावे जे पोते न समझे तेनो तेने पण बीजो शुं समझावे। ભાઈ બીજો બીજાને સમજાવી દે અને સમજાવવાથી બીજો સમજી જાય એવું વસ્તુ સ્વરૂપ જ નથી. સમજ એ અંતરની ચીજ છે અને પોતે પોતાથી સમજે તો ગુરુએ સમજાવ્યું એમ નિમિત્તથી કહેવામાં આવે છે. બાપુ વિતરાગ પરમેશ્વર તત્વને જે રીતે કહે છે તે રીતે તું નહીં માને તો તેને સત ક્યાં કહા વિતરાગ પરમેશ્વર તત્વને જે રીતે કહે છે તે રીતે તું નહીં માને તો તને સત હાથ નહીં આવે. ગમે તેટલા વ્રત તપ ભક્તિ જાત્રા આદિ કરે પણ એ બધા ફોગટ છે, કેમ કે એ તો બધા એકલા રાગના જ પરિણામ છે. તેમાંય વળી પરને લઈને મને એ ભાવ થયા એમ માને એ તો નરી મૂળતાને અજ્ઞાન છે. શું કીધું? પરને લઈને મને આ ભાવ થયા એમ માને તો શું છે? એ અજ્ઞાન છે. યાને ક્યા એ જો એસા માનતા હૈ. દેખો કભી કભાર હમ મંદિર મેં જાતે હૈ તો વહાં કે લોગ પકડતે હૈ, આવો આવો દિનેશભાઈ આવો, શું થઈ ગયા સાહેબ, કેમ તમે આવતા નથી, પહેલાં તો બહુ આવતા હતા અત્યારે કેમ થઈ ગયા? નહીં, અહીંયા સ્વાધ્યાય બહુ સારા ચાલે છે. અરે અમે પણ ઘરે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, ત્યાં નહીં થાય. અહીંયા મંદિરમાં વાતાવરણ એવું હોય કે ત્યાં ઘણો સરસ સ્વાધ્યાય થાય. તો એ ક્યાં કહે રે? નિમિત્ત સે સ્વાધ્યાય હોતા હૈ. ક્યાં કહા? પરને લઈને મને એ ભાવ થયા કે સારા ભાવ ક્યારે થાય? ભગવાનના દર્શન કરો તો તમારું પરિણામ એકદમ શાંત થઈ જાય. તો એ તો શું કીધું? હા, ગુરુદેવ કહે છે, હું મેં કાંઈ નથી કહ્યું. શું કહ્યું? કે એ તો નરી મૂળતા છે. નરી એટલે નિવ્વળ. અજ્ઞાનીને ભગવાનની પ્રતિમા દેખી શુભ ભાવ થાય છે, ત્યાં એના શુભ ભાવ ઉત્પાદ્યાને ભગવાનની. દેખો દિયાઈ હૈ યહાં લે. અજ્ઞાનીને ભગવાનની પ્રતિમા દેખી શુભ ભાવ થાય છે, ત્યાં એના શુભ ભાવ ઉત્પાદ્ય અને ભગવાનની પ્રતિમા તેનો ઉત્પાદક એમ છે નહીં. ભાઈ તારી થતી દશાના કરતા પણ એ પરદ્રવ્ય નથી. યાને તેરી દશા કેસી હે જો હો રહી હૈ તો હો રહી ઉસકો દૂસરા કોણ બનાવે? ક્યાં કહા? તારી થતી દશાના કરતા પણ એ પરદ્રવ્ય નથી અને પરદ્રવ્યની થતી દશાના કરતા પણ એ તું નથી. તું તો અકર્તા છો પ્રભુ, અર્થાત માત્ર જાણનાર પણ એ છો. ખરેખર પરનું કાર્ય તને રાગનું કાર્ય થાય તેનો કરતા જીવ નથી, કેમ કે જીવ કઈ રાગ સ્વરૂપ નથી. જીવ તો એકલા જ્ઞાન અને આનંદ સ્વરૂપ છે. આહા, ભગવાન આત્મા શુદ્ધ એક ચૈતન્ય માત્ર વસ્તુ છે, તે પોતાની નિર્મળ ચૈતન્યની પર્યાયપણે ઉપજે એવો કારણ કાર્ય ભાવ અથવા કરતા કર્મ ભાવ અભેદ છે. આત્મા કરતા અને એના શુદ્ધ રત્નત્રયના વિતરાગી પરિણામ એનું કર્મ એમ કારણ કાર્ય ભાવ અભેદ છે. આમ જીવ પોતાના નિર્મળ વિતરાગી કાર્યપણે ઉપજતો હોવા છતાં તેને અજીવ સાથે કાર્ય કારણ ભાવ સિદ્ધ થતો નથી.
દેખો કરતા કર્મ ભાવ અભેદ છે ને, એક હી દ્રવ્ય મેં હૈ, ઇસલિયે કરતા કર્મ ભાવ અભેદ હૈ. એસા બતાયા પરદ્રવ્ય કે સાથ યાને કર્મ કે સાથ શરીર કે સાથ ઇસ જીવ કા કરતા કર્મ સંબંધ નહીં હૈ.
કર્મ કા અર્થ સમજો,
હા, જીવને કર્મ બાંધે, જીવને કર્મ છોડે, એસે વો તો પુદ્ગલ દ્રવ્ય હૈ. યા કર્મ કે કારણ જીવ ઉત્પન્ન હુઆ, વો ઇસ ગતિ મેં ગયા, એક કથન ભલે આતા હૈ પરંતુ એસા ઉનમે કરતા કર્મ સંબંધ બિલકુલ નહીં હૈ.
યહાં કરતા યાને દ્રવ્ય ઓર કર્મ યાને પર્યાય, યાને ઉસકી જો ક્રિયા હો રહી હૈ તો દ્રવ્ય ઓર પર્યાય ઇસકા સંબંધ કો હી કરતા કર્મ સંબંધ.
કારણ કાર્ય લિખા ને યહાં, કારણ કાર્ય કહો યા કરતા કર્મ કહો, એક હી બાત હૈ.
હા બોલો બોલો આગે.
ક્યોંકિ યે હમ તો પરદ્રવ્ય પરદ્રવ્ય કહેતે તો વો શરીર કો તો અપને મેં રખતે ઓર બાકી અન્ય પરદ્રવ્ય કા કાર્ય નહીં કરતે એસા समझने लगते हैं। परंतु परद्रव्य में शरीर को कर्मों को भी यहाँ परद्रव्य कहा है, ये बात मूल में समझने जैसी है, क्योंकि जीव ने कर्म को बांधा है, उसको अभी उसको छोड़ना है। ये जो बातें आती है, कथन आता है, कर्म का उपशम किया, कर्म का क्षय किया, कथन भले हो, परंतु ये जो कर्म के क्षय की, उपशम की आदि जो क्रियाएं है, वो जड़ की है, वो जड़ में, जड़ के कारण उसके अपने से हो रही है, और जीव में उसके जो परिणाम हो रहे, सम्यक्वादी है जो कोई चारित्र के परिणाम है, वो जीव के उसमें अपने में अपने से हो रहे। भले निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, परंतु कर्ता कर्म संबंध उनमें बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहते हैं कर्ता कर्म जो भाव है वो अभेद है, अभेद में होता है, एक वस्तु में है, दो भिन्न वस्तुओं में नहीं पाया जाता। क्योंकि ये जो यहाँ लिखा है तो स्पष्ट शब्दों में लिखा नहीं था, जो तीसरी गाथा में भी यहाँ बताया ना, अभी हमने जो पढ़ी थी, देखो कहाँ गए, पेज नंबर कहाँ, शुरू में आए थे ना,
शुरू में,
हाँ पेज नंबर 4 पर उसके अर्थ दिए थे। पहले तो उन्होंने कहा, वहाँ जो सोने का उदाहरण दिया था, फिर कहा था जीव और अजीव के परिणाम जो वो अपने अपने से होते हैं, उसके अभिन्न होते हैं, जीव अपने परिणामों से अभिन्न है और अजीव अपने परिणामों से अभिन्न है। 310 में कहा था कि कोई कोई थी उत्पन्न थतो नथी, यानी आत्मा किसी का कार्य नहीं है और वो किसी को उपजाता भी नहीं है, ऐसे वहां पर गाथा में आया था। अब इस गाथा का अर्थ तो ये सामान्य लगता है हमें, किसी को उपजाता नहीं है, परंतु उसी को ये जो जयसेन आचार्य की टीका में विशेष अर्थ बताया है उन्होंने कि कर्म और नो कर्म का कर्ता नहीं, ऐसी विशेषता उसमें स्पष्ट खोल कर बताया उन्होंने। उनमें तो ऐसा लिखा है कि क्योंकि शुद्ध निश्चय नय से नर नारक तिर्यंच देव आदि विभाव पर्यायों के रूप से जीव कदाचित भी उत्पन्न नहीं होता है, तो कर्म से जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। देखो थोड़ा पढ़ के मैं बताती हूँ, ये आपके उसमें नहीं है, जयसेन आचार्य की टीका है, पेज नंबर 313 है। देखो यहाँ लिखते हैं, यस्मात् शुद्ध निश्चय नयेन नरनारकादि विभाव पर्याय रूपेण कदाचितपि न उत्पन्नः कर्मणा न जनितः, यानी नरनारकादि पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ नहीं है, इसलिए वो कर्म से उत्पन्न नहीं है, ऐसा कहते हैं। और नो कर्म की अपेक्षा से आत्मा उस कर्म का कार्य नहीं है, जो कि हम निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए कहते हैं कि इस कर्म के शरीर की रचना हुई, उस कर्म से ऐसा हुआ, उस कर्म से ऐसा हुआ, परंतु वो निमित्त बताने के लिए बताते हैं, परंतु कर्म ने जीव को उत्पन्न नहीं किया है, एक बात। और आत्मा उपादान रूप से परिणमन करके किसी भी कर्म नो कर्म को उत्पन्न नहीं करता, उपादान रूप से किसी कर्म नो कर्म को उत्पन्न नहीं करता, निमित्त रूप से नहीं करता, ये कहां कहा, उपादान रूप से कर्ता कर्म भाव जो बताया है वो अपने ही द्रव्य में लागू होता है। उपादान उपादेय जिसको हम कहते, उपादेय किसको कहते बहन, पता है आपको, उपादान उपादेय किसको कहेंगे, हाँ कार्य को उपादेय कहेंगे, किस अपेक्षा से, उपादान की अपेक्षा कार्य को हम उपादेय कहेंगे। मिट्टी को उपादान कहेंगे तो मिट्टी का कार्य घट जो बना है उसको उपादेय कहेंगे, और उसी कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहेंगे, कुम्हार की अपेक्षा उसको नैमित्तिक कहेंगे, और उपादान मिट्टी की अपेक्षा उसको उपादेय कहेंगे। ये उपादान उपादेय अपने ही द्रव्य में होता है। तो यहाँ कहते हैं जीव द्रव्य उपादान होकर कर्म नहीं, कर्म में कुछ नहीं करता है, यानी अजीव का कुछ नहीं करता, क्योंकि उपादान होकर वो अपनी पर्याय को करेगा, पर की पर्याय को नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए आत्मा कर्म और नो कर्मों का कारण भी नहीं है, कर्म और नो कर्म का कार्य भी नहीं है, और कर्म और नो कर्मों का कारण भी नहीं है। जब हम परद्रव्य परद्रव्य कहते हैं तो ये कर्म नो कर्म की बात जल्दी घुसती नहीं है, हम तो अन्य पर द्रव्यों की सोचते हैं और उदाहरण भी अन्यों के देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आचार्य की विशेषता है, कर्म नोकर पर ज्यादा घटाए उन्होंने। कहते कि आत्मा कर्मों का करता है कि नहीं है, अभी क्या सिद्ध किया, निमित्त की बात नहीं है, उपादान की बात चल रही। तो आत्मा कर्मों का करता नहीं है, तो कर्मों का छोड़ने वाला भी होगा कि नहीं है, नहीं हो सकता, कर्मों को बांध भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता है, इसलिए कहते कर्मों का मोचक भी नहीं है। जिस नए से हम बात, यहां निमित्त की भाषा नहीं चल रही है, उपादान रूप से वह कर्म का कारण नहीं है, तो कर्मों का मोचक है ने, उससे छूटने वाला तो होगा ना, या कर्मों को छोड़ने वाला होगा, क्षय करने वाला होगा, तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि परद्रव्य में उसका उपादान नहीं चलता है। इस कारण आत्मा बंध मोक्ष का करता नहीं, किस अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नए से, ना बंध का करता है और ना ही मोक्ष का करता है। ये तीसरी गाथा का अर्थ हुआ। अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे का विषय आएगा और उससे लगती बात होगी, तो हम फिर इसका आधार लेके पढ़ेंगे। अब यहाँ आगे बढ़ते, अभी हमारा विषय जो चल रहा था, कर्ता कर्म भाव अभेद है, इसकी बात चल रही थी ना, तो ये उपादान की बात चल रही है। कर्ता उपादान को ही यहाँ कर्ता कहा है, वो निमित्त रूप से, निमित्त नैमित्तिक भाव की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। आप पढ़ेंगे आगे नीचे के पैराग्राफ में, तीन चार लाइन हो गई थी।
लियो शू की तू याद आए थे ना।
हाँ, शू की तू कर्मनाक्षय
से पांचवी लाइन लास्ट पे। हाँ। कर्मनाक्षय उपशम आदि अजीव साथे जीव ने कार्य कारण भाव नथी, यानी जीव उसका करता होगा या जीव के कारण वहाँ कुछ होता होगा, ऐसी बात नहीं है। पर जीव ने मारी शके, जीवाड़ी शके, दाल भात रोटली शाक दवा दारू कपड़ा लता इत्यादि पर पदार्थ नु कार्य जीव करे, एवो कार्य कारण भाव सिद्ध थतो नथी। खेडूत हल चलावे, मजूर पाक ने लणे, वेपारी सोनू चांदी जवेरात इत्यादि नो वेपार करे, इत्यादि जड़ द्रव्य मां निपजता जड़ना कार्यो जीव करे, एवो परद्रव्य साथे जीव ने कार्य कारण भाव सिद्ध थतो नथी। ये पाक ने लणे बोले तो बस, अच्छा अच्छा पाक, आ वर्षे सारो पाक आव्यो छे, पाक बरोबर, फसल काटना लियो आवी बात। जीव पोताना परिणाम नु कार्य करे अने भेगू परिणाम करवानु कार्य पन करे, एम कोई रीते सिद्ध थतु नथी। जीव पोताना परिणाम न करे पन अजीवना नहीं, आ राग भाव जे थाय छे ते खरेखर तो अजीव छे, तेथी जीव पोताना ज्ञाता भावे परिणमे उपजे, ए तो इष्ट ज छे, परंतु शुभाशुभ परिणामे उपजे ते काई एनु स्वरूप नथी। कलशिकामां कलश 108 मां पंडित श्री राजमल जी कह्युं छे, आई कोई जानशे के शुभाशुभ क्रिया रूप जे आचरण रूप चारित्र छे ते करवा योग्य नथी, तेम वर्जवा योग्य पण नथी। उत्तर आम छे के वर्जवा योग्य छे, कारण के व्यवहार चारित्र होतु थकु दुष्ट छे। क्या कहा, व्यवहार चारित्र यानी जिसमें राग भाव है वो कैसे है, दुष्ट है कहते, यानी फायदेमंद नहीं है, अनिष्ट छे, घातक छे, तेथी विषय कशानी माफक क्रिया रूप चारित्र निषिद्ध छे। ये कलश टीका में 108 कलश में राजमल जी पांडे जी ने ऐसी बात बताई। तो शू સમકીતીને કે મુનિરાજને શુભભાવ હોતો જ નથી, હોય છે ને? સમકીતીને મુનિરાજને શુભભાવ હોય છે, પણ એ છે દુષ્ટ, અનિષ્ટ અને ઘાતક. કેમ કે સ્વભાવની નિરાકુળ શાંતિનો ઘાત કરે છે. ભાઈ, શુભ રાગ હોય તે જુદી વાત છે, અને એને હિતનું કારણ જાણી કર્તવ્ય માને એ જુદી વાત છે.
દેખો કેટલી બઢિયા વાત બતાય કે શુભ રાગ હોય છે જુદી વાત, પરંતુ હા તેને હિતનું કારણ જાણી કર્તવ્ય માને એ જુદી વાત. માન્યતાનો ફેર છે. તો પ્રશ્ન કૈસે પૂછતે તો શુભ રાગ કરના કે નહીં કરના, એ કરને ધરને કી બાત હી નહીં, વો હોતા હૈ.
હા, જો હોતા હૈ વો બતાયા જાતા હૈ. ઓર યહાં તો હમ એસા માનતે કે નહીં, જબ તક સમ્યક દર્શન નહીં હોતા હૈ તો શુભ રાગ કરના ચાહીએ ના. ઓર આપ કે હમકો અશુભ મેં ભેજના ચાહતે હૈ ક્યા, તો આપ પરમિશન દો હમે. અરે હમ કાહે પરમિશન દે. હા, इतना ही कहेंगे कि शुभ भाव से शुभ भाव ही करते रहो, तितने टाइम तक तुम आत्मा से दूर दूर ही रहोगे. क्या कहे, देखो बहुत सुंदर वाक्य लिया है. शुभ राग होए ए जुदी बात छे, अने एने हितनु कारण जानी कर्तव्य माने. यहाँ पहले पहले कर्तव्य कौन सा करने के लिए कहा था, मुमुक्षु को अपने स्वरूप का अनुभव कर. और यहाँ कहते हैं कि वो ऐसा समझता है कि पुण्य भाव शुभ राग होना वो अच्छी बात है, वो हितनु कारण है ऐसा मानता है. प्रथम अवस्था मा के साधक नी दशा मा पुण्य भावनो क्षय सर्वथा भले न थाय, पन ए भाव क्षय करवा लायक छे एवी दृष्टि तो चौथे गुणस्थानी ચોથે ગુણસ્થાનેથી જ એને હોય છે. એનો ક્ષય તો શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્ણ થાય ત્યારે થાય છે, પણ એ ક્ષય કરવા લાયક છે એવું શ્રદ્ધાન તો સમકીતિ ધર્માત્માને પહેલેથી જ નિરંતર હોય છે. યાને ચોથે ગુણસ્થાન સે હી ઇસ જીવ કી. અરે ચોથે ક્યાં, ઉસકે પહેલે જબ અભી અભી મિથ્યાત્વ મેં હૈ, કરણ લબ્ધિ મેં ચડ ગયા હૈ, तब भी उसके ऐसी नक्की मान्यता होगी ना कि करने लायक नहीं है, इसलिए तो उससे दूर हटता है. वो भले चल रहे हैं शुभ भाव, पर वो शुभ भाव करने के लिए नहीं कर रहा है.
ये शुद्ध उपयोग पूर्ण था कहा है, तो कब होगा शुद्ध उपयोग पूर्ण? तो क्या चौथे वाले को अपूर्ण होता है? हाँ नलिन भाई. हाँ, पूर्ण शुद्ध उपयोग जो जिसको कहते हैं ना, कर्णानुयोग की अपेक्षा भी जो शुद्ध उपयोग कहने में आता है वो बारहवें गुणस्थान में होता है. हाँ, तो वहां राग वो जो बुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक की बात ही नहीं है, बुद्धिपूर्वक भी जो राग है वो भी संपूर्ण नष्ट हो जाता है, उसकी बात है. यहाँ बारहवा गुणस्थान लिया, ए भाव क्षय करवा लायक छे एवी दृष्टि तो चौथे गुणस्थान थी हो छे. अने क्षय क्यारे थाय छे? શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્ણ થાય ત્યારે, બારવે ગુણસ્થાન કી વાત હૈ. એ કર્મો કો ક્ષય કરને કી વાત હી નહીં હૈ, શુભ ભાવ કે ક્ષય કરને કી વાત હૈ. વો ઉત્પન્ન હી નહીં હોના, પૂર્ણ રૂપ સે મિટ જાના ઉસકી વાત હૈ. ક્યોંકિ યહાં તો જિતને અંશ મેં હૈ રાગ ઉતના કષાય હૈ એસા કહેંગે, ઉસકી વિદ્યમાનતા કહેંગે. તો પૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ કષાય કા બિલકુલ अभाव हो जाने पर कहेंगे, नष्ट हो जाने पर, उसको बारहवें गुणस्थान में पूर्ण शुद्ध उपयोग कहने में आता है. शुद्ध तेरहवें गुणस्थान में उसका फल है,
शुद्ध उपयोग का फल है.
शुद्ध देखो यहां, क्योंकि शुद्ध उपयोग त्रिकाल सर्वत्र लगेगा, स्वपर में सब में उपयोग रूप ही है सब कुछ.
देखो देखो, जब ज्ञान
तीन लोक और अलोक
लब्ज और उपयोग रूप से कहने में आता है, वहां तो उनके ज्ञान में पूरा पूरा झलक रहा है. अभी उसको पलट कर कहीं आने लगाना ऐसा रहा ही नहीं है.
यानी कहां से हटाएंगे और कहां लगाएंगे, छद्मस्थ में क्या है, उपयोग कहीं तो लगाया है, एक चीज में लगाया है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा जो ध्यान है, ऐसा जो शुद्ध उपयोग है, अन्य से उपयोग हटाकर वहां लगाया है। अब केवल ज्ञानी को सभी चीजें उपयोग रूप में ही आ रही है, तो कहीं से हटा नहीं सकते, कहीं लगाए, ऐसा कोई एक से हटाए दूसरे में लगाए बात ही नहीं है। केवल ज्ञान तो पूर्ण प्रत्यक्ष है और सभी चीजें उनमें जो उपयोग रूप ज्ञान में है उनमें तो कोई लब्ध रूप होता ही नहीं है।
क्या कहा, देखो थर्ड लाइन से पढ़ता हूँ मैं। शुभ राग होय ए जुदी वात छे, अने एने हितनु कारण जानी कर्तव्य माने ए जुदी वात छे। प्रथम अवस्थामा के साधकरी दशामा पुण्य भावनो क्षय सर्वथा भले न थाय, पन ए भाव क्षय करवा लायक छे एवी दृष्टि तो चौथे गुणस्थाने तीज एने होय छे। एनो क्षय तो शुद्धोपयोग पूर्ण थाय त्यारे थाय छे, पन ए क्षय करवा लायक छे एवू श्रद्धान तो समकीती धर्मात्मा ने पहले थी ज निरंतर होय छे। यानी किसी को चौथे गुण स्थान से किसी के पांचवे किसी के सातवें, अज्ञानी ने एकांते कर्मधारा होय छे, भगवान केवड़ी ने एकली ज्ञान धारा छे, जारे साधक ने बेऊ धारा साथे होय छे। निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान धारा अने शुभाशुभ भावना परिणाम रूप कर्म धारा एम ए बन्ने ज्ञानी ने साथे होय छे। पण त्या कर्म धारा छे ते बंधनु ज कारण छे अने ज्ञान धारा ज एक अबंधनु कारण छे। तेथी तो कहूं के क्रियारूप चारित्र विषय कषायनी माफक निषिद्ध छे। डबल ध द चाहिए, ध आधा द,
ये ऊपर के पैराग्राफ में आई थी ना पंडित श्री राजमल जी ने लिखा है, ये ऊपर सेकंड पैराग्राफ बड़े पैराग्राफ में। हाँ,
चारित्र भाव में अंशे अशुद्धता भले हो पण दृष्टि में एटले श्रद्धान में तो तेनो निषेध छे। दृष्टि में शुभ भाव ने आदरवा लायक माने तो ए तो मिथ्या दृष्टि ज छे। अरे एने क्या पंथे जवू एने खबर नथी। क्रियारूप चारित्र याने स्वरूप में एकाग्रता छोड़कर कुछ न कुछ क्रिया करते रहना, जैसा फॉर एग्जाम्पल उपवास करना, दान करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, ये सब कैसे हैं क्रियारूप चारित्र है। उसमें आत्मा का अनुभव की बात ही नहीं है, बाह्य सारे जो राग भाव के साथ जो शरीर की क्रिया चलती है।
ऊपर लिखा है, देखिए ऊपर के जो बड़ा पैराग्राफ है ना तीसरी लाइन से जो शुरू होता है, उसमें जो राजमल जी कही चे, उसमें चौथी लाइन अही कोई जान से के शुभ अशुभ क्रिया रूप जे आचरण रूप चारित्र, शुभ अशुभ आचरण रूप चारित्र उसको कहा, उसको क्रिया रूप चारित्र कहा। जो क्रियाएं होती है, जो अनुष्ठान आदि होता है, तो वहां पूछा गया था कि वो करवा योग्य नहीं है, तो कोई कहेगा तो छोड़ने लायक भी नहीं है, तो ऐसा नहीं मानने में तो वो छोड़ने लायक ही है ऐसा मानना पड़ेगा।
अभी क्या कह रहे हैं, अरे एने कया पंथे जवू एने खबर नहीं, यानी ये मिथ्या दृष्टि जीव है उसको कौन सी सही बात है और कौन सी झूठी बात है, उसको कंफ्यूज है, पता ही नहीं कि कौन से हमें मार्ग पे चलना चाहिए। पुण्य भलू एम मानी ते अनंत काल थी पुण्य ना पंथे पड़ियो छे, पण बापू ए तो संसार नो एटले दुख नो पंथ छे भाई। धर्मी ने अशुभ थी बचवा शुभना एटले पुण्य ना भाव आवे छे, पण तेने धर्मी पुरुष काई भला के आदरणीय मानता नथी। પણ અનર્થનું મૂળ જાણી હેય રૂપ જ માને છે. પંચાસ્તિકાયમાં પુણ્યભાવને પણ અનર્થનું જ કારણ કહ્યું છે. શાસ્ત્રમાં એવા કથન આવે કે પહેલું પાપ ટળીને પછી પુણ્ય ટળે, પણ એ તો ચારિત્રની અપેક્ષાએ એની ક્રમની વાત કરી છે. પરંતુ દ્રષ્ટિમાં તો પુણ્ય પાપના ભાવ એક સમાનપણે જ હોય છે, કેમ કે બંને બંધના જ કારણ છે. યાને કહાં કોણ સી અપેક્ષા સે કિસ ગુણ કી અપેક્ષા સે કથન કિયા હૈ યે બાત હમારે ખ્યાલ મેં આયેગી તો અચ્છા હૈ. પુણ્ય પાપના ભાવ બંને વિભાવ છે, ચાંડાલનીના પુત્ર છે, એ બંને આશ્રવ અને બંધ તત્વ છે. એ પુણ્ય પાપ કે લીએ બાત ચલ રહી હૈ, વો જો હમ પઢ કે આયે હૈ, તે બંને ભાવ જળ પુદગળમય છે અને એનું ફળ પણ પુદગલ છે, માટે બંને હેય છે, આદરણીય નથી. એવું શ્રદ્ધાન જ વાસ્તવિક શ્રદ્ધાન છે. આય કહે છે
એનું ફળ પણ પુદગલ છે, એસા ક્યું કહા? હા, પુણ્ય પાપ, હા બોલો, ઉન્હોને તો બતા દિયા સહી. હા
હા બોલો બેન.
સંયોગી ભાવ કૈસે હોતે હૈ? હા, મોનિય કે કારણ. તો યહાં ક્યા હૈ, પુણ્ય પાપ કી બાત હૈ ના? બંને ભાવ આશ્રવ અને બંધ તત્વ છે. પુણ્ય પાપના ભાવ બંને વિભાવ ભાવ છે, ચાંડાલનીના પુત્ર છે, બંને આશ્રવ બંધ તત્વ છે, બંને ભાવ જળ પૂદગલમય છે અને એનું ફળ પણ પૂદગલ છે.
યહાં એનું ફળ પણ પૂદગલ છે, ઇસકે બારે મેં હમે.
પુણ્ય પાપ કે ભાવ કૌન સે ગુણ કી પર્યાય હૈ? ચારિત્ર ગુણ કી. ઉસકે કારણ ક્યા હોતા હૈ? વિભાવ બંધ હોતા હૈ, તો ઉસકા ફળ પુદગલ હૈ ને? વહાં કર્મબંધ કી બાત, નિમિત્ત રૂપ સે કર્મબંધ હોતે હૈ, ઓર ઉસકે ફળ મે ક્યા હોતા હૈ? હા, તો ઉસકે ફળ મે જો તો આઘાતી કર્મ કી જો બાત હૈ, યા અન્ય ભી જો સભી કર્મબંધ હોતે હૈ, ઓર ઉસમે ફિર દુબારા, યાની વો તો સંયોગ મે જુડતા હૈ, ઓર ભી વો પુણ્ય પાપ કે ભાવ કે ફળ પુદગલ હૈ ને વો કર્મબંધ હોતા હૈ, એસા લે સકતે ઇસમે. ઓર ભી કુછ નિકલ? આપણે તો સંયોગી ભાવ પર વિઘટિત કે પણ પુણ્ય પાપ કે ભાવ ઇટ સેલ્ફ સંયોગી ભાવ હૈ ને, તો ઉસકે કારણ ઓર નયે કર્મ કા બંધ હો જાયેગા. ઇસલિયે કહેતે કે વર્તમાન મેં દુઃખદાયક ઓર ભવિષ્ય મેં ભી દુઃખ દેને વાલે હૈ, એસી અપેક્ષા ઉન કર્મો કા ઉદય હોગા ઓર ફિર ઉસમે એ નયે સે જુડેગા, એસી બાતે હોતી હૈ.
આઈ કહે છે જીવનો એક આનંદ સ્વભાવ છે, તે જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ છે, તે પોતાના સ્વભાવની પર્યાયપણે ઉપજે એ તો બરાબર છે, પરંતુ રાગના પરિણામે ઉપજે વા રાગના પરિણામનું તે કારણ થાય એવું એનું સ્વરૂપ નથી. દેખો ક્યાં કહે રહે હૈ કે રાગરૂપ પરિણામના એ જીવ કા સ્વભાવ નહીં હૈ. યા તો રાગ હોને કે લીએ આત્મા કારણ હૈ, એસા ભી ઉસકા સ્વભાવ નહીં હૈ. એ તો પછી કળશમાં કહેશે કે આ બંધ થાય છે તે કોઈ અજ્ઞાનનો મહિમા છે. હમને તો જ્ઞાન કા મહિમા બહુત બાર દેખા હૈ, લેકિન યહાં તો અજ્ઞાન કી મહિમા બતા રહે. ક્યા કહેતે હૈ, એ બંધ જે હો રહા હૈ વો કિસ કારણ હો રહા હૈ? તો અજ્ઞાન કી મહિમા હૈ, અજ્ઞાન કે કારણ. આહા, એને નિજ સ્વરૂપની ખબર નથી, માટે અજ્ઞાનથી બંધ થાય છે. બાકી કઈ જ્ઞાન સ્વભાવ છે તે બંધનું કારણ નથી. પોતે અંદર શુદ્ધ એક ચૈતન્યના પ્રકાશરૂપ પ્રભુ છે, એકલા જ્ઞાન અને આનંદના સ્વભાવથી ભરેલો પોતે ભગવાન છે. તેને ઉપાધિય માનીને તેના દ્રષ્ટિને અનુભવ જેને કર્યા તે જીવ કલ્યાણના પંથે છે. ભલે એને હજુ કાંઈક રાગ હોય, પણ તેને એ પોતાની ચીજ નથી. પોતાને ઇષ્ટ એવા શુદ્ધોપયોગ પણે પરણ ઉપજો, તેને શુભાશુભ પોતાના કાંઈ નથી. એમાં શુભાશુભમાં હે બુદ્ધિ છે ને તેથી ધર્મી પુરુષને એનું સ્વામિત્વ હોતું નથી. અરે ભાઈ, જરા વિચાર કર, ક્ષણમાં આંખો મીચાઈ જશે અને તું ક્યાંય ચાલો જઈશ. પ્રભુ, આ બધા અહીં તને અભિનંદન આપે છે ને બાપુ, એ તને કાંઈ કામ નહીં આવે. પુણ્યના યોગથી કદાચિત 5-50 લાખનો સંયોગ મળી જાય તો એ કામ નહીં આવે. જે ક્ષણમાં છૂટી જાય તે શું કામ આવે? જે ક્ષણમાં છૂટી જાય, અંદર શાશ્વત મહાન ચૈતન્ય દેવ બિરાજે છે, તેના દ્રષ્ટિ અને અનુભવ વર્તમાન ન કર્યા તો બાપુ તું ક્યાં જઈશ? ત્યાં તને કોણ શરણ? ભાઈ, આ બધું તું પોતે જ તારા હિત માટે વિચાર. અત્યારે આ અવસર છે. ક્યાં કહે રહે થે? જો ક્ષણ મેં સ્વયં હી છૂટ જાને વાલા હૈ, વો તુમ્હારા ક્યા ભલા કરને વાલા હૈ, ઓર વો તુમ્હે ક્યા કામ મેં આને વાલી બાત હૈ. ઓર મેં કૈસા હું? મેં તો ચૈતન્ય સ્વભાવી જો હું, વો કાયમ ટિકને વાલા હું. ઓર ઉસકા હી હમ આશ્રય લેંગે તો આગે બાત બઢેગી. તો કહેતે બાબુ, આ બધું તું પોતે જ તારા હિત માટે વિચાર. અત્યારે આ અવસર છે, ફરી નો આવે એમ કે કહે છે. સર્વ દ્રવ્યોને અન્ય દ્રવ્ય સાથે ઉત્પાદ્ય ઉત્પાદક ભાવનો અભાવ છે. એ ઉત્પાદ્ય ઉત્પાદક ભાવ કા અર્થ ક્યાં દેખાતા અભી હમને યાદ હૈ કિસકો? હા, ભાવ કા અર્થ ક્યા? ઉત્પાદ્ય ઉત્પાદક કા અર્થ ક્યા? આપને સહી બતાયા, એક હી દ્રવ્ય મેં ઉત્પાદ્ય ઉત્પાદક ભાવ હોતા હૈ, લેકિન ઉત્પાદ્ય ઉત્પાદક કા અર્થ ક્યા હૈ? ઉત્પાદક,
હા, કોણ હૈ વો નહીં પૂછા. ઉત્પાદક શબ્દ કા મીનિંગ ક્યા હૈ,
અર્થ ક્યા હૈ પૂછા ના ભાઈ આપકો. હા, કોઈ બાત નહીં, કોઈ બાત નહીં. યહાં વિરેશભાઈ બોલના ચાહતે થે. અરે ઉદાહરણ નહીં જોઈએ ભાઈ,
અર્થ અર્થ
અર્થ જોઈએ છે. ઉસકા મીનિંગ, મીનિંગ
ક્યા? આપકે ફેક્ટરી મેં કાહે કા ઉત્પાદન કરતે હો? ઉત્પાદન એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ, બનાના, ઉસકો તૈયાર કરના, ઉત્પન્ન કરાના.
તો હમ પૂછ રહે હૈ ઉત્પાદ્ય ઓર ઉત્પાદક, ઇસકા અર્થ ક્યા? એસા હમ પૂછ રહે. હા, ઉત્પાદક એને મેન્યુફેક્ચરર.
હા બરોબર, ક લગાય ને આગે.
હા બોલો બોલો. હે, કાર્ય કારણ ભાવ. હા હા બરાબર. ઓર કોઈ બતાના ચાહેંગે આપ? અચ્છા બોલો બોલો. હા બસ, ઇતની આસાન બાત થી ઓર કોઈ ક્યાં? એ અર્થ જબ તક હમારે ખ્યાલ મેં નહીં આતા હૈ ના, તો 10 બાર ક્યુ ન બોલે. તો ઉત્પાદક યાને આપકી ભાષા મેં
મેન્યુફેક્ચરર,
મેન્યુફેક્ચરર. ઓર જો આઈટમ હૈ જો મેન્યુફેક્ચર હો રહી વો ઉત્પાદ્ય હૈ. તો યહાં ઉત્પાદ્ય ક્યા હૈ? પર્યાય. ઓર ઉત્પાદક કો હૈ તો આત્મા માન લો, દ્રવ્ય માન લો. હા, તો યહાં
ક્યા મેન્યુફેક્ચરર કી ઉપર કે સાથ ઉત્પાદક ભાવ હૈ ઉસકા નહીં હૈ.
યહાં તો ઉત્પાદ્ય ઉત્પાદક ભાવ એક હી દ્રવ્ય મેં લગે. એ તો ભાઈ બાત એસી હોતી હૈ,
એ સમજાને કી.
ઉદાહરણ જો હોતા હૈ વો પરિપૂર્ણતા લાગુ નહીં હોતા, આંશિક દેશ લાગુ હોતા હૈ. યે ક્યા કહે રહે હૈ? સર્વ દ્રવ્યો ને અન્ય દ્રવ્ય સાથે ઉત્પાદ્ય ઉત્પાદક ભાવનો અભાવ છે. ઇસકા અપની ભાષા મેં અર્થ સમજના હૈ તો એક દ્રવ્ય દૂસરે દ્રવ્ય કા કાર્ય કરે એસા હૈ નહીં. તો એ ઉત્પાદ્ય ઉત્પાદક ભાવનો અભાવ છે. એ વાત ખ્યાલ મેં આવી ભાઈ? આ તો ત્રણ લોક ત્રણ કારણા સર્વ અનંતા પદાર્થોના કારણ કાર્યનું સ્વરૂપ થોડા શબ્દોમાં બતાવ્યું છે. હા, અમારી દિવ્યાબેનને જોઈને બતાવ્યા છે. સારું છે, બહુ સારું, બહુ આયા થયા નથી વાંચ્યું, બહુ સારું. એ ઉપરી આયા થા થોડી દેર પહેલે. हाँ अभी अभी हमने पढ़ा था ना। अच्छा क्या लिखा है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले अभी आज ही पढ़ा था हमने ये कारण कार्य भाव। आज ही पढ़ा था भाई। आओ ना मिल गया। हाँ 29 पेज पे कहाँ है डॉक्टर? हाँ मैंने पढ़ा ना अभी लिखा पढ़ा था। ये देखो यहाँ लिखा है ना बेन, चैतन्य नहीं परे अपने अपने उपजे वो कारण कार्य भाव अथवा कर्ता कर्म भाव पोता थी नहीं, ये उत्पादी उत्पादक की बात नहीं है। 26 पेज पे क्लियर लिखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो क्या कहा? सर्वद्रव्यों ने 31 पेज पर लास्ट पैराग्राफ, सर्वद्रव्यों ने अन्य द्रव्य साथे उत्पाद्य उत्पादक भावनो अभाव थे। भाई आ तो त्रण लोक त्रण कारणा सर्व अनंता पदार्थों कारण कार्य नु स्वरूप थोड़ा शब्दों में बतायु छे। आ लोगों ने अनाज औषध अने कपड़ा आमे आप्या ने अमे खूब देश सेवा करी एम लोको कहे छे ने, धूड़े सेवा नत करी नथी सांभळने। ए अन्य द्रव्यना काम तू केम करे, वड़ी आने जैन धर्मनी खूब सेवा करी एम कहे छे, परंतु जैन धर्मनी सेवा एटले शू? आहा शुद्ध एक न्यायक भावना आश्रय निर्मल रत्न त्रयना परिणाम प्रकट करे, एक शुद्धोपयोग रूप परिणमे ए जैन धर्मनी सेवा छे। बाकी दया दान ने बारनी प्रभावनाना कामों मा रोकाई रहे ते काई जैन धर्मनी सेवा नथी। क्या कहते? आ पुस्तको छापीने प्रभावनाना कामों मा रोकाई जाए ए पोताना आत्मा थी वंचित थाय ए काई जैन धर्मनी सेवा नथी एम लखे छे। तमारा बुक मा छे? અમારા બુકમાં છે। એક જાન્યુઆરી થી આજ સુધી એમાં જ રોકાયા હતા। આવે 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 એમાં રોકાયા ને હવે કેમ બાજ બહાર કાઢી કે જ્યાં સુધી આ વાંચે નહીં ને ત્યાં સુધી ટ્યુબલાઇટ પેટતી નથી। જુઓ ના એ જ બધા વાંધા છે, એને કઈ એક્સક્યુઝ નથી હો બેન। દયાદાન આદિ વિકલ્પ ઉત્પાદ્ય એ લખ્યું બેન, દયાદાન આદિ વિકલ્પ ઉત્પાદ્ય એટલે કાર્ય, અને તેનો તું ઉત્પાદક એવું વાસ્તવિક કાર્ય કારણનું સ્વરૂપ નથી। જડ અચેતન વિકલ્પોના કાર્યનો ચેતન દ્રવ્ય કરતા થાય એવો કાર્ય કારણ ભાવ બની શકતો નથી। યે જો બાત હૈ ના અભી હમને વાક્ય જો પઢા હૈ, ક્યા કહેતે હૈ જડ અચેતન વિકલ્પ યાને ઇસકા અર્થ ક્યા લેના, ક્યા નામ હૈ ભાઈ સૌભાગ્યચંદજી? જડ અચેતન વિકલ્પ હા ઓર ઉસકે વિકલ્પ હા ये हमने रट के रखा है उसको नहीं देखना है। हाँ अरे कौन बोल रहा है भाई? अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। ये जड़ अचेतन विकल्प जो है ना, विकल्प यानी विकल्प कौन करेगा? जड़ द्रव्य करेगा। अरे भाई हमने क्या पूछा था आपको, जड़ अचेतन विकल्प का अर्थ क्या?
यहाँ राग को अचेतन कहा है।
हाँ तो आपने किसको बोला कि जड़ पदार्थ जो है उसकी बात चल रही है, अचेतन पदार्थ की बात चल रही है? अरे हम तो कह रहे हैं ये विकल्प जो है उसको ही समय सार में पुद्गल क्या है कहा ना भाई, भूल गए ना अपन
ये राग को यहाँ जड़ कहा है।
हाँ, शुभाशुभ भावों को यहाँ जड़ कहा है,
पुद्गल की यहाँ बात ही नहीं है। राग का कर्ता, राग जो अचेतन भाव है उसका कर्ता चेतन द्रव्य नहीं हो सकता, ये बात यहाँ घटा रहे।
हाँ जी,
हाँ।
देखो देखो, यहाँ तो क्या बात बताई, जैसे जैसे हमने पहले देखा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उनमें उत्पाद्य उत्पादक भाव नहीं है, वैसे ही जड़ अचेतन विकल्प जो है, ये जो कार्य हो रहा है, विकल्प जो उठ रहे हैं, उसका कर्ता चेतन नहीं है, यानी जीव द्रव्य नहीं है। और इन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं बनता, उसमें भी कार्य कारण भाव का अभाव है, उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। समय सार कलश टीका, कलश 106 मा कहूं छे के शुद्ध वस्तु मात्र तेनी स्वरूप निष्पत्ति तेनाथी जे स्वरूप स्वरूपाचरण चारित्र तेज तेज मोक्ष मार्ग छे आ आत्मा संदेह नथी। त्या स्वरूपाचरण चारित्र संबंधी विशेष बात करीने छेल्लू कयू छेल्ले कयू के त्रणे काळे आवू छे जे शुद्ध चेतना परिणाम रूप स्वरूपाचरण चारित्र ते आत्मानु निज स्वरूप छे, शुभाशुभ क्रियानी माफक उपाधि रूप नथी। यानी ये शुभाशुभ क्रिया यानी ये परिणाम कैसे है, उपाधि रूप है, त्रास दे रहे, तेथी एक जीव द्रव्य स्वरूप छे। जो आ स्वरूपाचरण चारित्र निजानंद रसमा लीन रही तेमाज रमु ते स्वरूप आचरण छे, आ दयादान व्रत तप भक्ति इत्यादि राग नु थमु ए काई स्वरूपाचरण नथी, केम के ते जीव द्रव्य स्वरूप नथी, क्योंकि वो विवाह रूप परिणाम थे, परिणाम ने अन्य द्रव्य स्वरूप छे। तो अन्य द्रव्य स्वरूप छे यानी अभी हमने जड़ अचेतन देखा ना, वो लियो आ प्रमाण जीव द्रव्य ने अन्य द्रव्य स्वरूप जे राग आया ना भाई, राग क्या ना उसको, तेनी साथे कार्य कारण भाव सिद्ध थतो नथी। आवी बात हवे कहे छे वाली बात हम कर लेंगे। छावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सो